الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الرسل معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے ہمارے پروردگار جو آپ نے نازل فرمایا ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے پیغمبر کی پیروی کی سو ہم کو تصدیق کرنے والوں میں لکھیے. یہ وہ دعا وہ اللہ جل شانہ کے حضور التجا جو حواری جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنہیں ایمان لانا نصیب ہوا جنہوں نے دین حق کی پیروی کی اور دین حق کو مخلوق تک پہنچانے میں اپنا حصہ جنہیں کردار ادا کرنے کا شرف نصیب ہوا, جہاں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے انہیں دین اسلام کی معاونت اور حق کی دعوت دی, وہیں انہوں نے اللہ جل شانہ پر جو ایمان ہے جو ایمان کی بنیاد ہے آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے, اور اس ایمان لانے پر جہاں سے دعوت حق دی جا رہی ہے واشہد بأن مسلمون وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی بھی انہوں نے عرض کی. اب جہاں حق نصیب ہوا تو اس کا اگلا حصہ جو ہے ربنا اے ہمارے پروردگار, یعنی ہر طرح کی اور ہر پہلو کی جو محتاجی ہے وہ ذات جو اسے پورا فرماتی ہے اس کے حضور عرض کر رہے ہیں آمنا بما انزلت, آپ نے جو کچھ نازل فرمایا اپنے رسول پر جو کچھ نازل فرمایا اس پر وہ ایمان لاتے ہیں واتبعنا الرسول, اور صرف ایمان نہیں لاتے بلکہ ایمان لا کر جو حکم ہے اس کی پیروی کرتے ہیں فاکتبنا مع الشاہدین سو ہم کو تصدیق کرنے والوں میں لکھیے. بنیاد ہے جیسے آج ہمارے بھائی محمد اسلام کو حق نصیب ہوا ہے جہاں اللہ جل شانہ کی ذات اور اس کی وحدانیت پر اپنی شہادت دیے, وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کی بھی شہادت ہے, چونکہ اللہ کریم تک جو رسائی ہے وہ اللہ کے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ذریعے ممکن ہے, اور ان حقائق کا جاننا اور اس مادی حیات کے جو ضروریات اور ان کے وسائل یعنی جائز حصوں سے آشنائی اور عمل کرنے کا سلیقہ ہر پہلو سے یہیں سے نصیب ہوتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو آپ پر ایمان لائے جنہیں نصیب ہوا کہ انہوں نے اللہ کریم کا جو کلام ہے اسے قبول بھی فرمایا, تو وہ جہاں اس کا اقرار اور اس اقرار کے ساتھ اس پر قائم رہنا اس سارے کے ساتھ پھر وہ عرض کر رہے ہیں کہ فاکتبنا مع الشاہدین تو ہمیں تصدیق کرنے والوں میں لکھیے. اب یہ شہادت ہے اس کا شاہد اللہ ہے, جہاں ہم نے اپنے آج اس بھائی کو اسلام میں داخل ہونے کی مبارک ساعتیں دیکھی ہمیں بھی نصیب ہوئیں, جہاں یہ اللہ کریم کی وحدانیت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شہادت دے رہا ہے وہیں اللہ کریم کی ذات خود شاہد ہے. اسی طرح جب اس حق کو قرآن کریم فرقان حمید کے تحت سمجھا اور اختیار کیا جا رہا ہے اور اس پر عمل کیا جا رہا ہے اور پھر جب یہ بات حساب کتاب تک جائے گی تو یہ شہادت عمومی بات نہیں ہے, انتہائی خصوصی بات ہے, اور تمام شہادتوں کے بعد جو آخری شہادت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اس شہادت کے حصول का रास्ता ऐसा नहीं है कि जिसे कोई कठिन कह सके। सिराते मुस्तकीम है, ऐन सीधा रास्ता है। ज़िंदगी की का कोई पहलू, कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें रहनुमाई नसीब ना हो, और कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें रहनुमाई की ज़रूरत ना हो। इसलिए कि जब ख्वाहिशात ज़ाती या अपनी ख्वाहिशात की बनाई गई दुनिया में कोई ज़िंदगी बसर करना चाहता है, हालांकि वो ये चाह रहा होता है कि वो कुछ हासिल करे जिसकी उसे ख्वाहिश है, या जो कुछ हासिल हो उससे उसे खुशी मिले, लेकिन ख्वाहिशात ज़ाती पर अमल करता है और असूल और ज़ाबते छोड़ता है, तो दूसरों के दुख का सबब बनता है, लेकिन साथ साथ अपने लिए भी जो दुख है उसे जमा करता चला जाता है। ऐसा नहीं देखा कि जो एतदाल से हट जाए उसकी अपनी जो ज़िंदगी है उसमें सुख हो, ऐसा नहीं देखा, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा ही है जैसे रात को कोई कहे कि जी सूरज चढ़ा हुआ है और रोशनी है और हर सू जो है वो नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई जुल्म और ज़्यादती करके ये कहे कि मैं सुख में हूँ, वो सुख में हो नहीं सकता। और इसीलिए ये शान रबूबियत और अल्लाह की अता है कि उसने जो हिस्से हमें अता फरमाए हैं, जो रहनुमाई हमें नसीब हुई है, वहाँ जहाँ उसका हुक्म है बुनियादी हिस्सों में वो हमारी ज़रूरत है। ये तो उसकी शान है कि हम अपनी ज़रूरियात की तकमील में सरगर्दा हैं, और वो बार इलाह रब्बुल आलमीन उसे इबादत का दर्जा देते हुए अजर और सवाब भी अता फरमाते हैं, तो उसका एहसान। तो जहाँ बात आई अल्लाह करीम का नाजल फरमाना, तो पहले हिस्सा जो था करीब तौरात थी, और उसके बाद जो मुतसिल हिस्सा अपने वक्त में आप अलैहिस्सलाम पर नाजल हुआ वो इंजील है, जो अल्लाह का हुक्म है। अब अल्लाह करीम का हुक्म मैंने अर्ज़ किया, हमारी ज़रूरत है रब्बना, जिन्हें ये इख्तियार करना और ये दुआ नसीब हो रही है वो भी इकरार इब्तदान इसी बात से कर रहे हैं, ए हमारे परवरदगार, ए हमारे पालनहार। तो हम अपनी ज़िंदगियों, अपने शबो रोज़, अपने मामलात, अपनी ज़रूरियात, उनकी तकमील, ख्वाहिशात, हर शय का जायज़ा लेते आए, और अपनी ज़िंदगी या अपने मामलात का मवाजना करते हैं, जहाँ जो अमल दुरुस्त है यानी इत्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उठाया गया है या इख्तियार किया गया है, उसका उस अमल का नतीजा, उस अमल के असरात उससे हसूल। और जहाँ हमने ख्वाहिशात ज़ाती या तजावज़ पर अमल इख्तियार किया है उसके नताज दोनों को आप देख लें, आपको समझ आ जाएगा। कोई वो काम जिसे दुनियावी हयात कामयाबी कहती हो लेकिन दीन उसे कामयाबी न कहता हो, कोई एक ऐसी मिसाल कि वो कामयाब हुआ हो, ऐसा नहीं हो सकता। शैतान का शैतान होना अगर कोई ये समझना शुरू कर दे कि ये कमाल है तो फिर शैतान हुआ। इसी तरह जब कोई जालिम अपने जुल्म को कामयाबी समझना शुरू कर दे तो उसकी मिसाल उसी तरह है कि वो मरदूद हुआ। अल्लाह करीम ने इस दारे दुनिया में, इस आलम आबो गिल में ये फुर्सत अता फरमाई है, जहाँ इस्तात दी है वहाँ ये फुर्सत है, और आखिरी वक़्त तक जब मुनकशिफ हो जाएगी सूरत बरज़ख की और मौत के फरिश्ते सामने आ जाएंगे, फिर मामला बदलना शुरू हो जाएगा, इसलिए कि तब इम्तिहान ख़त्म हो। फरिश्तों का कलाम सिर्फ साहिब ईमान से नहीं है, बे ईमान से भी, उससे भी वो सवाल करते हैं। जैसे कुरान करीम ने दोज़ख के फरिश्तों से मुतल्लिक फरमाया कि वो पूछेंगे कि तुम्हारे पास अल्लाह करीम के डराने वाला कोई नहीं आया था। जैसे अल्लाह करीम ने जन्नत के फरिश्तों को ये हुक्म फरमाया और पसंद फरमाया कि अहले जन्नत को वो खुश आमदेद और सलामती की दुआएं देते हुए दाखिल कर रहे हैं और दरवाजे खोल रहे हैं, वैसे ही जब दुनिया से रुखसती होती है तो तब भी अल्लाह के फरिश्ते कलाम करते हैं, और जिन हालात और जिन सूरतों में बंदे ने ज़िंदगी बसर की हो वैसे नताज उस वक़्त फिर शुरू होना हो जाते हैं। फिर यहाँ साहिब ईमान पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान कि ता दमे वापसी उसके पास ये इख्तियार है कि वो किस राह का इंतखाब करता है। और अल्लाह गफूर रहीम है, सिद्क से तौबा नसीब हो जाए, सिद्क के दिल से तौबा नसीब हो जाए, न सिर्फ माफ़ फरमाता है, अजर और सवाब अता फरमाता है। और यहाँ जब बात आती है शहादत की, तो मौजूद सामीन कराम, ये शहादत सिर्फ ऐलान नहीं है। आपकी ज़िंदगी का एक एक अमल और एक एक हिस्सा या तो साले है और या गैर साले। जहाँ जो हिस्सा साले है वो अपने उन मदारिज में शहादत है। और ये शहादत का सिलसिला मैंने अर्ज़ किया ख़त्म नहीं होता, ये यौम अलस से शुरू है। अल्लाह करीम ने जब अरवाह पैदा फरमाई उस रोज़ भी शहादत मांगी गई और शहादत दी गई। दुनिया में हम आते हैं, अल्लाह ईमान नसीब फरमाए, जिन्हें विरासतन नसीब हुआ, जिन्हें पैदाशी तौर पर नसीब हुआ, उनकी जो सदाएं उनकी समात में गूंजती हैं वो भी अल्लाह अकबर की गूंजती हैं। इसी तरह जूँ जूँ होश आता है, जूँ जूँ दीन हक के जो अहकामात हैं उनका फ़राइज़ का फ़र्ज़ होना और अहकामात का हुक्म होना हर हिस्से में, वो अपना हिस्सा हो हुक्म का दाखिल होता आता है और अमल की सूरत में हम इख्तियार करते जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब भी हक बार महसूस हो, हक में बार नहीं है या तंगी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई मीठे को कहे खाते हुए कि ये कड़वा है, तो मीठा कड़वा नहीं होता। जिसे खाना नसीब हो रहा है उसे अपने देखने की ज़रूरत है, इसलिए कि वो बीमार है। उसे बुखार है, उसके बुखार का असर है कि उसके मुंह का जायका ख़राब हो चुका है, उसे मीठा भी कड़वा लग रहा है। इसी तरह जो बुनियादें हैं, जैसे मैं अपने इस भाई को अर्ज़ कर रहा था कि जहाँ बुनियाद और इमानियात आप समझें सीखें, वहीं इबादत हैं। और इबादत अपने अल्लाह की नसीब हो, अपने अल्लाह से शर्फ़ हम कलामी नसीब हो, दायरे दुनिया की ज़रूरियात और उनसे मुतलका अपनी गुजारशात अल्लाह के हजूर बंदा पेश कर रहा हो, उसी से मदद मांग रहा हो और उसी की इबादत कर रहा हो, तो जहाने फ़ानी के ना खुदाओं के जो सजदे हैं उनसे वो बचता चला जाता है। दीन हक वो तौक जो मखलूक के गर्दन में डालती है उससे महफूज रखता है, उससे इंसान को बचना बहसीयत मुसलमान नसीब होता है। और ये शहादत मैंने अर्ज़ की कि हमारी ज़िंदगी के शब रोज़ हमारी ख्वाहिशात से हमारे मामलात छोटे छोटे हिस्सों में भी, कुरान करीम के एक हिस्से में इरशाद फरमाया गया है कि जहाँ क़यामत के कायम होने पर इंसान शशदर रहते हुए अपनी इख्तियार को पुकारेगा। हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह उस इख्तियार जहाँ है उसका, उस आया करीमा के साथ तहरीर में कामज़ में लिखते हैं कि हर बंदे को ये अंदेशा होता है कि वो एक बादशाह है या वो एक साहिब इख्तियार है। अब किसका इख्तियार कितना है, किसी का इख्तियार अपने वजूद पर है, किसी का इख्तियार अपने कुंबे पर है, ख़ानदान पर है, आबादी पर है, मुल्क पर है। जो जितना साहिब इख्तियार है उसे अपने इख्तियार के मुताबिक अल्लाह के हजूर जवाबदेह होना है, इसलिए कि किसी का किसी दर्जे का इख्तियार ऐसा नहीं है जो उसका ज़ाती वस्फ हो, ये सारी अल्लाह की अता है। और अल्लाह करीम ने जो कुछ अता फरमाया है और दारे दुनिया की ज़िंदगी जो उसने इम्तहानगाह बनाई है, कौन इस अता और इस फुर्सत में कैसे रहा, ये तो इम्तहान है। और जहाँ इबादत की बात आती है मौज़ा सामिन कराम, तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बुनियादी हिस्सा नमाज है। अब नमाज की जो अदायगी है वो सिर्फ़ हुक्म की तामील तक बात नहीं रहती, सिर्फ अजर और सवाब तक बात नहीं रहती, बल्कि वो नया खाने दिल तक पाकिजगी का सबब बनती है। वो बंदे मोमिन को एक तशफ़ी भी है, एक सहारा भी है, और उसे जो सिरात मुस्तकीम पर चलना है उसके काबिल और उसकी अहलियत देती चली जाती है। जहाँ नमाज की शर्फ कबूलियत है वहाँ अगले तक अगली नमाज तक वो हिफाजत का सबब बनती चली जाती है। अब अगर इस फ़र्ज़ की अदायगी बार महसूस हो रही हो तो क्या खा रहे हो, क्या ये देखना ज़रूरी नहीं है कि हलाल है या हराम? अगर हलाल है तो पाकीज़ा भी है या नहीं? क्या मैं बेहयाई में तो नहीं मुबतला होगा? नमाज हया देती है, बेहयाई से दूर करती है, और अगर मैं बेहयाई में मुबतला हो गया हूँ और नमाज से दूर हो रहा हूँ तो मेरा फ़ैसला किस तरफ है, हक की तरफ है या हक से हटकर जिन जुल्मत में और अंधेरों में मैंने डूबना है उस तरफ का है? तो जब अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे तो समझ आएगी कि नमाज अदा करना बार नहीं है, मेरी अपनी खसलतें ऐसी हो गई हैं कि मुझे नमाज अदा करना नसीब नहीं हो रहा। तो सारी इबादात जो हुक्म जहाँ हुक्म है वो सारे का सारा हमारी ज़रूरत है। अब इस सारे में वो हिस्सा माशाहिदीन, दुनिया की शहादतें हमने देखी हैं बिकती हुई। आज भी अपने निज़ाम अदल में अगर कोई जाए तो जहाँ शहादत मांगी जाती है वहाँ शहादत मुयस्सर है, ख़रीदी जा सकती है। कमाल है, शहादत भी ख़रीदी जा सकती है। आला शायद जो है वो गवाह जो है ये कैसे शहादत जो है या गवाही ख़रीदी जा सकती है? लेकिन ये इन्हितात है, ये दीन से दूरी का सबब है, ये असूल और ज़ाबते इसलिए टूट गए हैं कि हमने हक का रास्ता छोड़ा है। तो जब शहादतें ख़रीदी जाएँ तो वहाँ किसने देखना है कि ये शहादत सच्ची भी है या झूठी है, किसने उस शहादत का जायज़ा लेना है? लेकिन अल्लाह के हजूर जब कोई शहादत दे रहा होगा तो कुरान करीम फरमाता है उसके वजूद और उसके आज़ाद जो हैं वो उसके हजूर शहादत दे रहे हैं, और वो कहेगा कि तुम भी मेरे खिलाफ शहादत दे रहे हो, तुम्हें किसने ये कुव्वत दी है कि तुम बोल रहे हो? वो कहेंगे, जवाब देंगे अपने आप को, वजूद को वो जवाब देंगे आज़ाद, जिसने तुम्हें ताकत दी थी उसने मुझे हमें भी ताकत दी है। तो वो शहादत जो लम्हा लम्हा दरकार है उसके लिए ये वक़्त है, लेकिन सिद्क के दिल से। अब जब शहादत उसके हजूर बात आएगी मौज़ा सामिन कराम तो सिद्क के दिल की बात है। तो जब सिद्क के दिल की बात आएगी तो फिर सिर्फ तालीमात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात नहीं रुकती, फिर बात जाती है कैफियात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितना अंधेरा बढ़ता है, जितना तूफ़ान बढ़ता है, जितने मसाइल बढ़ते हैं हर हिस्से में, उतनी ही जो मुसबत कोशिश होती है उसकी ज़रूरत बढ़ती चली जाती है। जहाँ बात आती है दार दुनिया और इसकी ज़िंदगी की, यकीनन लोग कैफियात कल्बी से मुंसलिक होते हैं कि अल्लाह जल्ला शानू की रज़ा नसीब हो, उसका कुर्ब नसीब हो, सिद्क नसीब हो, हिफाजत नसीब हो, यकीनन। लेकिन जब आप कुल्ली तौर पर हयात और इस फुर्सत को देखेंगे तो इसका एक एक लम्हा इंतहाई कीमती है, इसलिए कि इन्हीं लम्हात पर इन्हिसार है अपने फ़ैसले का, और बंदगी की जो तरक्की है और जो अल्लाह करीम की अता है वो सारी अल्लाह जल्ला शानहु ने इन्हीं लम्हात में अता फरमानी। दुनिया से जब कोई पर्दा कर जाएगा या दुनिया में आते उसकी आवाज़ नहीं है, या अभी दुनिया में पहुँचा नहीं, इन दो हिस्सों में वो मुकल्लफ़ नहीं, लेकिन दुनिया में दाखिल हुआ यूँ इस इस्तादाद को पहुँचा कि उस पर हुक्म नाफिज़ हो, उस वक़्त से लेकर जब तक उस इस्तादाद के काबिल है, ये वो लम्हात हैं जो इंतहाई कीमती। दुनिया की ज़िंदगी, ये आवारदात, ये मसाइल, ये सेहत और बीमारियाँ, ये कारोबार, ये नुकसान, ये फ़ायदे, ये औलाद, ये दोस्त, ये अहबाब, बेशुमार पहलू हैं ज़िंदगी के। इन तमाम पहलुओं में से गुज़रना है और अल्लाह का हुक्म मानते हुए गुज़रना है। तो जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल किया जाए, अब जब सदक़े की बात आती है तो सदक़े में बड़े बेहतरीन हिस्सों के जो सदक़ात हैं उनमें अहल आयाल की जो परवरिश है वो भी सदका शुमार। अर्ज़ की गई कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हमारी ज़िम्मेदारी है, ये अल्लाह के नाम पर सदका ये भी जो हमारी ज़िम्मेदारी है। तो फरमाया गया कि अल्लाह का हुक्म है, उसके हुक्म की अदायगी में जब तुम अमल कर रहे हो तो ये भी सदका शुमार होगा। तो अल्लाह करीम गफूर रहीम है, वो बहानों से माफ़ फरमाते हैं। लेकिन इन्हीं लम्हात में ये इम्तिहान है कि कौन किस राह का इंतखाब करता है। अल्लाह करीम से हमेशा हिफाजत मांगनी चाहिए, अल्लाह करीम से हमेशा तौफीक मांगनी चाहिए। अपनी तरफ, अपनी ज़ात की तरफ जब बात या मामलात आते हैं, इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा ज़िक्र या नमाज की जो तलकीन है, जवाब मिलता है कि हम वादा करते हैं कि अब जो है नहीं छोड़ी जाएगी। मैं कौन और आप मुझसे वादा या उस वादे के निभा कर कुल्ली मानों में कुव्वत, ये बड़ी अमूमी बातें हैं और जो दुरुस्त इससे नहीं। अल्लाह से तौफीक मांगी जाए और अपनी तरफ से अपनी पूरी यकीन और कुव्वत के साथ अल्लाह से तौफीक मांगते हुए अमल पैरा हुआ जाए, इसलिए कि बात उसकी तरफ मंसूब की जाए जहाँ हतमी है। जब बात ज़ात की तरफ मंसूब की जाए तो क्या ज़ात का एतबार है हमें, क्योंकि इसी ज़ात और इसी के फ़ैसलों का तगैर और इसी ज़ात और इसके फ़ैसलों को बदलते हमने कितनी बार देखा है। वही वादे वईद, बल्कि दुनिया तो कहती है वो वादा ही क्या जो वफा हो, कमाल हो। अब ये कितनी हक से दूरी है और कितना अपने आप के साथ ज़ुल्म है। मौजूद सामीन कराम, तो बात जब आएगी फ़क्त उबना माशाहिदीन, तस्दीक की, तो तस्दीक किस की होगी? हक के मानने की होगी। हक का मानना कैसे माना जाएगा, जब उसके मुताबिक अमल किया जाएगा या उसके मुकाबिल अमल किया जाएगा? तो जब इस हक की बात आएगी तो उसके फरिश्ते जो तहरीर कर रहे हैं कंधों पर बैठे हैं, ये तहरीरें भी सामने होंगी, ये वजूद भी शहादतें देंगे। और सबसे बड़ा जो बात है वो ये अल्लाह करीम खुद शाहिद। फिर ये शहादतें, ये मामलात, आज हमारे पास फुर्सत है, अल्लाह ने एहसान फरमाया है, तौफीक अता फरमाई है, तो इन लम्हात से इस्तफादा नसीब फरमाए। वमकरू वमकरल्लाह, उन्होंने तदबीर की और अल्लाह ने तदबीर की। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह बेहतर तदबीर करने वाले हैं। मकर जो है, इसको जब उर्दू में इसका तर्जमा आता है या जितना इस्तेमाल आता है, ये मकरो फरेब में आता है, यानी मकर मुस्बत पहलुओं में नहीं आता, ये आता है फरेब। अमूमन कहते हैं ये मकर कर रहा है, ये फरेब कर रहा है, मुतरादिफ़ बातें हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल मनफी पहलू में होता है। अरबी में जब लफ्ज़ मकर आता है तो तदबीर के मानों में आता है। अब तदबीर मुस्बत है तो मतलब मुस्बत है, तदबीर मनफी है तो मतलब फिर मनफी है। तो मकर को जब उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है तो इसका कोई ताल्लुक मुस्बत पहलुओं से नहीं रहता, लेकिन अरबी में उस अमल पर इसका इन्हिसार है कि ये मुस्बत है या मनफी है। अल्लाह जल्ला शानू ने जो इरशाद फरमाया, वह मकर व मकर अल्लाह, उन्होंने तदबीर की और अल्लाह ने तदबीर की। अब उनकी जो तदबीर थी वो इस माने में आ रही है जिसे हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ने जो तदबीर की ये इस माने में आ रही है कि उसने हक फरमाया, क्योंकि उसका इख्तियार है और वो हक फरमाता है। क्यों? कि वो लोग जिन्हें दावत हक दी गई, जिन्हें इतने मोजज़ात देखना नसीब हुए, जिन्हें अपने दरमियान अल्लाह का नबी और रसूल नसीब हुआ, फिर कितने बदबख्त हैं कि मुकाबिल आए और आप अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाना चाहा, आप अलैहिस्सलाम को शहीद करना चाहा, अपनी दुनिया की कुव्वतें जमा की, अपनी तदबीरें की। अब वो तदबीर जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए की जा रही है, इस मकर का माना जब आएगा तो वो जो मकरो फरेब है उस मानों में आएगा। और जब ये बात आएगा वह मकर अल्लाह, और अल्लाह ने तदबीर की, अब सारी कुव्वतें जमा कर ली, कुरैश मक्का ने पूरी तदबीर की और उस गफूर रहीम ने एक मकड़ी का जो जाला है उससे उनकी तदबीरें जो हैं वो ख़त्म कर दी, ज़ायल कर दी। तो यहाँ जब बात आती है कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कैद किया जाए, आपको सज़ा दी जाए, तकलीफ़ दी जाए और शहीद किया जाए, ومکر اللہ, اور اللہ نے تدبیر کی, اللہ کریم نے آپ کو علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھا لیا. جو آپ کے خون کے در پہ تھے وہ آپس میں ہی لڑے, اپنی رہنما کو مارا, اپنی رہنما کو سزا دی. ان تمام حصوں میں کیا اللہ کریم کو منظور ہے؟ واللہ خیر الماکرین, اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والے ہیں. اس میں بے شمار پہلوؤں سے حکمت ہے اور وہ غفور الرحیم ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دوبارہ نزول ہوگا, پھر اگلے حصوں میں جہاں جہاں یہ موقع آئے گا اس سے متعلق گزارشات پیش کرتا جاؤں گا. لیکن دنیا کی زندگی میں بے شمار بھول بھلیاں ہیں, اور ہم اپنی دانست میں جو عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک ہماری محرک میں نیت ہوتی ہے. جب اپنے عمل کو دیکھتے ہیں ظاہراً وہ درست بھی ہو, لیکن محرک جو پیچھے نیت ہے وہ اگر درست نہیں ہے تو پھر اس کو کس تدبیر کے معنوں میں لوگے؟ مکر و فریب میں لوگے یا تدبیر مثبت پہلوؤں میں آئے؟ تو یہ وہ حصے ہیں جہاں ضرورت ہے کہ ہم اپنی ان باریکیوں کو دیکھتے جائیں. اور عجیب مزاج ہے کہ جب بندہ غلطی کی طرف آتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ اپنی غلطیوں کو جواز دیتا ہے. ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, تلخی کرتے ہیں, کسی کی حق تلفی کرتے ہیں, اپنی کسی غلطی کو دیکھتے ہیں, تو ان تمام جو حصے ہیں غلطیاں ان کے جواب میں ہم جواز دیتے ہیں. کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے. فلاں کے ساتھ زیادتی جو کی ہیں کیوں کیا؟ وہ اس قابل تھا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس لیے میں نے اس کے ساتھ یہ زیادتی کی. یعنی اپنی غلطی کو جواز دیتے ہیں. اسی طرح دنیا کی زندگی, اپنے مسائل, اپنے رزق کے اصول, بے شمار پہلو ایسے ہیں کہ جہاں ہم جواز دے رہے ہوتے ہیں اور ہوتی ہمارا عمل جو ہے وہ غلط ہوتا ہے. تو اپنے اعمال کا جائزہ اور ان اعمال پر خالص عمل, اس اخلاص کے لیے تو ہم اللہ اللہ کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جہاں تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق دل سے عمل کرنا ہے, اس صدق کے قابل ہوا جائے کہ ہمیں کیفیات نصیب ہوں, ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو, ہم اپنی غلطی کو غلط کہہ سکیں اور اپنے درست جو سامنے راستہ ہے اس پر چلنے کی استعداد نصیب ہو سکے. اللہ کریم غفور الرحیم ہے, ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہم ہماری کمزوریوں اور گناہ معاف فرمائے, توفیق عمل اور استقامت فی الدین نصیب رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.